ठीक उसी वक्त मारिया और टाइगर अपने बेटे के साथ वहां आकर खड़े हो गए। टाइगर ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अरमान को गले से लगा लिया था और बोला था, किंग हमें जाना होगा। मुझे लगता है कि अब ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो आपको परेशान कर सके, लेकिन अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत आएगी, आप सबसे पहले मुझे फ़ोन करेंगे। जैसे ही टाइगर ने ये कहा, अरमान ने खुशी से उसे गले लगा लिया और फिर सीधे जाकर मारिया के सिर पर प्यार से हाथ रखा। टाइगर की ओर देखते हुए बोला, मारिया की आंखों में कभी कोई आंसू नहीं आना चाहिए टाइगर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही अरमान ने ये कहा, मारिया भी मुस्कुराते हुए अरमान के गले से लग गई। आस्था ने भी जाकर मारिया और टाइगर से मुलाकात की, क्योंकि टाइगर और मारिया को उन्होंने ही उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कहा था और अब अपने किसी स्वार्थ के लिए वो उन्हें रोकना भी नहीं चाहते थे। वैसे भी अब ऐसा कोई कारण नहीं था कि उन्हें रोका जाए। फिलहाल आस्था ने ये फैसला कर लिया था कि ज़िंदगी भर मारिया और टाइगर इस तरह उनके बॉडीगार्ड बनकर नहीं रह सकते। उनकी भी अपनी ज़िंदगी है, उनका बच्चा है, अब उन्हें अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, ना कि किसी के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। आस्था मारिया को गले लगाते हुए बोली, मारिया दीदी, आप हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और आप हमारी आइडल भी रही हैं। हम आपको बहुत याद करेंगे और एक बात, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही आस्था ने ये कहा, मारिया मुस्कुराकर आस्था को गले से लगाते हुए बोली, आपको मुझसे वादा करना होगा क्वीन, जब भी ज़रूरत होगी आप मुझे ज़रूर बताएंगी, बिना किसी झिझक के। तभी आस्था ने अपनी पलकें झपकाते हुए हामी भर दी। इसके बाद आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और बाकी सभी लोग टाइगर और मारिया से मिले। आखिर में मारिया सीधे नानी माँ के गले से लग गई और बोली, आपकी बहुत याद आएगी नानी माँ, और हाँ, जैसे ही हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे मैं आपको भी अपने पास बुलाऊंगी। कुछ दिन आपको हमारे साथ रहना होगा, आखिर हमारे डेविड को कैसे संभालना है ये आप ही तो सिखाएंगी। जैसे ही मारिया ने ये कहा, नानी माँ ने हल्की नम आँखों के साथ उसे गले लगाकर कहा, क्यों नहीं बिटिया, क्यों नहीं, हमारी बेटी बुलाएगी और मैं नहीं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। वैसे भी थोड़ा बाहर का माहौल भी देख लूँगी और वहाँ जो तुम्हारे जैसे गोरे गोरे लोग रहते हैं उनसे उनकी खूबसूरती का राज भी पूछ लूँगी। जैसे ही नानी माँ ने मजाक के अंदाज में ये कहा, सभी लोग मुस्कुरा दिए। फिलहाल प्राइवेट जेट में बैठकर सिंघानिया मैंशन के गार्डन से टाइगर और मारिया अपने बेटे डेविड को लेकर स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो चुके थे। अरमान ने हाथ हिलाकर उन्हें खुश रहने की शुभकामनाएं दी। कहीं ना कहीं टाइगर को जाते देखकर आस्था की आंखें हल्की सी नम हो गई थी, लेकिन अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबाया और कहा, अगर मारिया वापस यहीं चाहिए तो आप एक बार हुक्म कर सकते हैं, मैं वो प्राइवेट जेट स्विट्ज़रलैंड में लैंड होने से पहले ही वापस बुला लूंगा। जैसे ही अरमान ने सबके सामने ये कहा, आस्था हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, अब तो जानते हैं ना टाइगर भैया मारिया दीदी के कब से हमारे साथ हैं और आपके साथ तो बचपन से हैं, लेकिन इतने कम समय में हमें उनसे इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि आज उनके जाने पर थोड़ा दुख तो हो ही रहा है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए हम इस तरह से उन्हें अपने साथ बांध कर भी तो नहीं रख सकते हैं ना। फिर उसने आगे कहा, और वैसे भी आपने उनके लिए जो तैयारी की है वो बेहद अच्छा निर्णय था। स्विट्ज़रलैंड में आपने उनके लिए एक अच्छा खासा बिजनेस भी डेवलप करके दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे। ये सुनकर सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। फिलहाल इसके बाद दादाजी ने सबको देखते हुए कहा, बच्चों अब तुम लोग जाओ और वसुंधरा और वीर को लेकर आओ, तब तक हम सब यहीं रुककर उनका इंतजार करेंगे। ये सुनते ही सभी लोग बिना देर किए रायचंद विला के लिए निकल पड़े। वहीं रायचंद विला में वसुंधरा पूरी तरह से मायूस होकर बैठी हुई थी। जब से वो डाक विला से वापस आई थी तब से उसे लग रहा था कि शायद इस काम के बाद अभिमान जी उसे रोक लेंगी और अपने परिवार के साथ रहने के लिए कहेंगी, लेकिन जब किसी ने भी उसे नहीं रोका तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। वो मायूसी के साथ चुपचाप बैठी हुई थी। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था, यही हाल वीर का भी था, उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि अरमान का दिया हुआ काम उसने बखूबी निभाया था, लेकिन उसे भी अपने मन की उदासी साफ महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। अब भी सुबह के वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा वो वसुंधरा जी को खाना खाने के लिए समझा रहा था, माँ कम से कम प्लीज थोड़ा सा तो खा लीजिए, आपके अलावा है ही कौन मेरा इस दुनिया में, अगर आप इस तरह से खाना पीना छोड़ देंगी तो आप ही बताइए फिर कैसे चलेगा। कहीं ना कहीं वीर पूरी तरह से अपनी माँ को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गई और वो बोली, पता नहीं मेरे दिल और दिमाग पर कैसी पट्टी बन गई थी कि मैं इतनी गिर गई। अपने हंसते खेलते परिवार को मैंने अपने ही हाथों से तबाह कर लिया वीर, अपने ही हाथों से सब बर्बाद कर दिया। मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था, काश मेरी मौत हो गई होती। कहीं ना कहीं वसुंधरा पूरी तरह से खुद को कोस रही थी। ये सुनकर वीर की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी माँ को गले से लगाते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो माँ, प्लीज ऐसी बातें मत करो। ये कहते कहते वीर की आंखें भी पूरी तरह भर आई थी।
तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने जाकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वीर और वसुंधरा अभी तक अपनी बातों में ही खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला पूरा का पूरा सिंघानिया परिवार वहां आ चुका था। सबसे आगे अभिमान जी थे, उनके पीछे पीछे सभी लड़कियां और साथ ही आहान, ध्रुव और अरमान भी थे। जैसे ही वे सब अंदर आए, अभिमान जी ने वसुंधरा और वीर को रोते हुए देखा। वो तुरंत आगे बढ़े और टेबल से एक ग्लास जूस उठाकर वसुंधरा की ओर बढ़ाते हुए बोले, वसुंधरा पहले थोड़ा सा जूस पी लो। जैसे ही अभिमान जी ने ये कहा, वसुंधरा और वीर एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे, मानो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। फिर वसुंधरा हैरानी से उठ खड़ी हुई और पूरे परिवार को वहां देखकर उसकी आंखों में अचानक खुशी झलक उठी। वो फटाफट आगे बढ़ी और सबसे पहले अरमान की गोद से अंश को झपटकर अपनी बाहों में भर लिया। उसे कसकर सीने से लगाते हुए उसके माथे को चूमने लगी। अंश भी खुशी खुशी अपने छोटे छोटे दो दांत दिखाते हुए खिलखिलाने लगा। आखिर उसे भी वसुंधरा की आदत हो गई थी, वो उसे पहचानने लगा था। इसके बाद वसुंधरा ने गुनगुन को गोद में लिया, उसे भी ढेर सारा प्यार दिया। फिर आस्था को गले से लगाया, रौनक को गले लगाया और सभी लड़कियों से बड़े प्यार और खुशी के साथ मिली। वो भावुक होकर बोली, तुम सब यहां? उसने अरमान को भी गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास खड़ी होकर वो कुछ पल के लिए रुक गई। चाहकर भी उसे गले नहीं लगा पाई, लेकिन अरमान ने वसुंधरा के मन की झिझक को समझ लिया और खुद ही आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। अचानक जैसे ही अरमान ने वसुंधरा को गले लगाया, वो पूरी तरह से टूट गई और फूट फूट कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए वो लगातार रोती रही और अरमान ने उसे मजबूती से थाम लिया। आस्था ने इशारे से अभिमान जी को आगे बढ़ने को कहा। अभिमान जी ने वसुंधरा को सहारा देकर बैठाया, उसे जूस पिलाया। वहीं वीर भी बारी बारी से सभी से मिला और उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। तभी आस्था ने माहौल को हल्का करते हुए मुस्कुरा कर कहा, बस बस जितना रोना था हो गया, अब रोने का टाइम खत्म। अब आप सब लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, हम यहाँ बाराती बनकर आए हैं दुल्हन को ले जाने के लिए।
जैसे ही आस्था, रौनक, राधिका और वंशिका ने हंसी के साथ ये कहा, वसुंधरा पूरी तरह से शर्मा गई और अपनी साड़ी में चेहरा छुपाने लगी। वहीं तब तक अभिमान जी ने तुरंत ही एक प्लेट में रखे हुए फ्रूट्स उठाकर वसुंधरा को देते हुए कहा था, लेकिन मेरी दुल्हन तो कमज़ोर लग रही है। अब जैसे ही अभिमान जी ने सबके सामने ये कहा, सभी मुस्कुरा दिए थे और कुछ शर्मा कर इधर उधर ही देखने लगे थे। वहीं अब जल्दी से आहान फटाफट ध्रुव के कानों के पास पहुंच गया और बोला था, देख भाई, ये अभियान पापा भी कितने ज्यादा रोमांटिक हैं। अब समझ में आया कि हमारे अंदर रोमांस कहाँ से भरा हुआ है भाई। जब जड़ ही ऐसी हो तो पत्ते तो रोमांटिक होंगे ही। अब जैसे ही इस तरह से आहान ने बातें की, कहीं ना कहीं ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा था। वहीं मन ही मन उसने हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा था, पता नहीं मेरे कानों में फुसफुसाने की इसकी आदत कब जाएगी। और कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह से मुस्कुरा दिया था। फिलहाल वसुंधरा को माँ कहकर आस्था उसे अपने साथ कमरे में लेकर चली गई थी। वहां ले जाकर उसने सबसे पहले वसुंधरा के कपड़ों के कबाड़ यानी अलमारी में से एक खूबसूरत सी साड़ी निकाली और उन्हें पहनाने लगी। वसुंधरा उससे काफी सारे सवाल करना चाहती थी कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, लेकिन आस्था ने उन्हें कुछ भी पूछने से मना कर दिया और बोली थी, आपको किसी भी तरह के सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि अब दुख के दिन खत्म हो चुके हैं। ये बोलकर आस्था ने अपने हाथों से वसुंधरा को तैयार किया था। साथ साथ वंशिका, रौनक और बाकी सारी लड़कियां भी उनकी मदद कर रही थीं। वसुंधरा को एक लाल रंग की साड़ी पहनाई गई थी। तभी जल्दी से आस्था बोली थी, पापा के साथ आपकी शादी हम एक बार फिर से करवाएंगे और ये शादी हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए साथ निभाने वाली होगी। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा, वसुंधरा की आंखें पूरी तरह से भर आई थीं और कांपते हाथों के साथ वो रोने लगी थीं। लेकिन सभी लड़कियों ने उन्हें शांत कराया और बोली थीं, माँ ये खुशी के आंसू हैं, आपको इस तरह से रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक सभी लड़के वसुंधरा को आंटी कहकर बुलाते थे, लेकिन अब जैसे ही सभी ने उन्हें माँ कहकर पुकारा तो कहीं ना कहीं उनके दिल को एक अलग ही तरह का सुकून मिला था। नम आँखों से उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया था और अचानक वसुंधरा ने आस्था का हाथ पकड़ लिया और पूरी तरह से रोते हुए बोली, आस्था मेरे बच्चे, तुम तो सचमुच में हीरा हो, तुम्हारी जैसी अच्छी बच्ची मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तुम्हें और अरमान की शादी रोकने के लिए किस हद तक षड्यंत्र रचे, तुमसे कितनी नफरत की, लेकिन बदले में तुमने आज तक मुझसे तेज आवाज में बात तक नहीं की। वाकई तुम महान हो बेटे, तुम महान हो, तुम्हारी जैसी बेटी कोई हो ही नहीं सकती। सच में आस्था, तुम एक महान आत्मा हो जिसने एक पत्थर दिल इंसान को इंसान बना दिया, एक उजड़े हुए घर को फिर से घर बना दिया। आज सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी बच्ची हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी, और सच बताओ हम अंदर से पूरी तरह से खाली थे,
लेकिन तुमसे मिलने के बाद हमने खुद को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। तभी आस्था तुरंत उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं, वैसे भी अब आप हमारी माँ हैं और आज के बाद आपको किसी भी पुरानी बात को लेकर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, हम सब आपकी बेटियाँ हैं, आप हमें डांट सकती हैं, हमें समझा सकती हैं, हम पर हुक्म चला सकती हैं और हमेशा हमें अपनी बेटियों की तरह ढेर सारा प्यार भी कर सकती हैं। आप जानती हैं, हम सब की ज़िंदगी में कभी माँ थी ही नहीं और अब हम सब आपको ही अपनी माँ मानते हैं। ये सुनकर रौनक भी आगे बढ़कर भावुक होते हुए बोली, मेरी माँ तो मुझे उस वक्त छोड़कर चली गई थी जब मुझे माँ शब्द के मायने भी नहीं पता थे, लेकिन आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है मानो हमें हमारी माँ वापस मिल गई हूँ। वहीं वंशिका और राधिका भी तुरंत इमोशनल होते हुए बोली, हमारी तो बचपन में भाई के अलावा कोई था ही नहीं, माँ क्या होती है, प्यार क्या होता है, हमें कभी कुछ पता ही नहीं चला। तभी राधिका ने आगे कहा, मेरे तो माँ बाप सब कुछ थे, लेकिन जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया, मुझे मरा हुआ मान लिया, लेकिन दिल के कोने में माँ की जगह आज भी खाली है और माँ का प्यार कोई और कभी नहीं भर सकता। ये सब कहते हुए सभी लड़कियाँ पूरी तरह से भावुक होकर सीधे वसुंधरा के गले से जा लगी। वसुंधरा ने भी हल्के हल्के रोते हुए सभी को बड़े अपनेपन और प्यार से गले लगाया और भावुक होकर बोली, मेरी बच्चियों, मैं तुम लोगों को अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना प्यार दूंगी, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तुम लोगों ने मुझे दिल से माफ़ किया और अपनाया है, वादा करती हूँ कि हमेशा अपने बच्चों को अपने सीने से लगा कर रखूँगी। ये सुनकर कहीं ना कहीं सभी ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखा और फिर फिलहाल जल्दी ही वसुंधरा को तैयार करने के बाद सभी लड़कियाँ उन्हें नीचे ले आईं। वहीं अभिमान जी की नज़रें वसुंधरा पर टिकी रह गईं और वो उन्हें तारीफ भरी नज़रों से देखने लगा। उसके मन में आया, वैसे चाहे कुछ भी हो, उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है। अभिमान जी को लगातार इस तरह देखते हुए देखकर वसुंधरा खुद में ही थोड़ा सा शर्मा गई। वहीं रौनक ने तुरंत शरारत करते हुए आस्था के कान में धीरे से कहा, देखा तुमने पापा किस तरीके से मम्मी को देख रहे हैं, अगर यही चलता रहा तो पूरी रात हमें यही निकालनी पड़ेगी और हम आगे का प्रोसेस भी नहीं बढ़ा पाएंगे, चलो फटाफट से लेकर चलते हैं। फिर बिना देर किए सभी लोग उन्हें लेकर सिंघानिया मेंशन की ओर जाने लगे थे, लेकिन वहां सिंघानिया मेंशन में एक अलग ही तरह का बवाल मचा हुआ था। आखिर क्या बवाल मचा हुआ था तुम्हारे मेंशन में, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनिए तेरे इश्क में का लास्ट एपिसोड।